अभी धर्म के अनुसार भोगों को अर्जन करने वाले लोग बहुत कम है इस दुनिया में, मनुष्य में बहुत कम है। अधर्म करके भी भोग मिले इसमें लगने वाले लोग अधिक हैं। धर्म का आचरण करने से भोग की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष नियम है, लेकिन धर्म के अनुसार भोगों को इकट्ठा करने वाले भोगने वाले बहुत कम है। जैसे भोगों में एक भोग है स्त्री संग, तो वेद शास्त्र के अनुसार विवाह करके इस सुख को भोगना धर्म माना जाता है। तो इस संसार में देखा जाए तो अधर्म बहुल जनता है, कहीं कहीं विवाह का कोई नियम नहीं है, कुछ भी नियम नहीं, कहाँ विवाह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और विवाह करके भी धर्म के नियमों के अनुसार स्त्री संग होना चाहिए, इन सब बातों का पालन करने वाले प्रायः संसार में बहुत कम है। तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह से भोग के लिए ललायित, उनको खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, घर चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, चाहे वो झूठ बोल करके हो, दूसरे की हत्या करके हो, या पाप करके हो, सता करके हो, जैसे तैसे चाहते, इसके लिए जीवों को चाहे कितना भी कष्ट हो उसकी परवाह नहीं करते। तो पापी लोग भरे पड़े। मान लीजिए कोई दुकान में अपना धन कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि दुकान में खड़ा है चिकन खा करके, मुर्गा खा करके खड़ा रहता है, वो सोचता है कि हम तो ईमानदारी से बेच रहे हैं घर द्वार, ये सौदा बेच रहे हैं, लेकिन पेट में मांस खाया है, शराब पिया। ड्राइवर ड्राइविंग करते हैं तो उनको लिखना पड़ता है, कहीं कहीं लिखा गया है कि ड्राइविंग और ड्रिंकिंग का मेल मत होने दीजिए, मतलब ड्राइविंग के समय ड्रिंकिंग मत कीजिए, जब ड्राइविंग समाप्त हो जाए तब कई बोतल पी लीजिए। क्या किया जाए ये भी कहने का साहस नहीं होता है किसी को कि मत पीजिए, इतना ही कहते हैं कि ड्राइविंग के समय मत पीजिए, ऐसा करने से शायद हो सकता है ना पिए, और उसको कह दिया जाए कि कभी मत पीजिए तब तो सदा पिएगा। तो ड्राइविंग कर रहा है शराब पी करके, दुकान में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, मांस पेट में रखा हुआ है, ये पापी। तो ये जो धन कमा रहे हैं, नौकरी आदि कर रहे हैं, वो भी धर्म के अनुसार नहीं, पाप के अनुसार भोगों को चाहते हैं। तो धर्म के अनुसार भोगों को चाहने वाले लोग इस दुनिया में बहुत विरल हैं, बहुत कम। अच्छा, धर्म के अनुसार जो लोग आचरण करते हैं तो उनमें मुमुक्षु तो कोई कोई होता है, कोई कोई सोचता है कि जन्म मृत्यु में है, चले किसी देवी देवता को प्रणाम करें, मंदिर में चलें, दर्शन कर लें, ये करें, ऐसे लोग बहुत कम। यदि संख्या विचार करके देखी जाए तो जितना लोग क्लब में सिनेमा में जाते हैं उसके अपेक्षा मंदिरों में बहुत कम जाते हैं, है ना, बहुत कम जाते हैं। रिलैक्स होने के लिए भी जितना पार्क में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, उतना नहीं जाते हैं। यहाँ की ट्रेनें जो भरी जाती हैं इधर उधर, उतना भर भर करके कभी किसी मंदिर में कोई गया होगा? इतना धक्का पर धक्का नहीं जाते, बहुत कम रुचि है धर्म। तो धर्म का पालन करने वालों में भी मुमुक्षु केचन ये हमारे परीक्षित कहते हैं, कोई कोई हैं जो वास्तव में जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हैं। केश नहीं वह द्विजोत्तम, ये तो, और मुमुक्षु नाम सहस्रसु कश्चित मुच्येत सिद्ध्यति। अच्छा, जो मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त का मतलब है राग द्वेष परिवार के मोह आदि के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो सहस्रो सहस्रो मुक्त होने की इच्छा वालों में कोई एक मुक्त हो पाता है, परिवार आदि का संग छोड़ पाता है, कोई एक ऐसा देखा जाता है। बहुत कम लोग मुक्त हो पाते हैं, मुक्ति का अर्थ ये है, बच्चे में पत्नी में आसक्ति है, समाज में आसक्ति है, तो अब सोचते हो अब घर कैसे छोड़े, मुमुक्षा है, छोड़ने की इच्छा है, लेकिन मुमुक्षु नाम सहस्र सुख कश्चित मुच्येत सिद्ध,
कोई कोई मुक्त होता है, नहीं मुक्त हो पाता है प्राय। स्वरूप से शरीर से त्यागने की तो बात दूर है, मौन से भी मुक्त नहीं हो पाता। तो हजारों हजारों मुमुक्षुओं में कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है, स्वजन की आसक्ति से या देह की आसक्ति से। अच्छा, कोई कोई होता है सिद्ध्यति, जो तत्व जानाती, ठीक ठीक जान पाता है, कम से कम ज्ञान भी सही सही हो जाए कि हम आत्मा हैं, भगवान के हम हैं और कोई हमारा नहीं है। उन लोगों में इस तरह का राग नहीं करना चाहिए, वास्तव में यह बंधन का कारण है। इस बात का रियलाइजेशन भी हजारों हजारों मुमुक्षुओं में कोई एक कर पाता है। सही सही बातें समझ में नहीं आती है। कोई भी जीव तो आत्मा है, आत्मा का कोई संबंध नहीं है परिवार आदि से, लेकिन बहुत विरल है इस बात को ठीक ठीक समझ पाना। समझ जाने पर भी मुक्त होना कठिन होता है, बंधन लगा रहता है। ये मानसिक बंधन का वर्णन किया जा रहा है, मन में आसक्ति बनी रहती है। तो फिर आगे वो कहते हैं कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिस्वपि महामुने। हे महामुने, जो लोग मुक्त हो जाते हैं, जिनके हृदय में राग द्वेष नहीं रह पाता है, सिद्ध हो जाते हैं, पूरा पूरा ज्ञान जिनको रहता है, ऐसे ऐसे कोटि कोटि ज्ञानियों में कोई एक नारायण परायण भक्त हो पाता है। प्रशांत आत्माएं विशेषण दे रहे हैं, नारायण परायण, नारायण को, श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने वाला व्यक्ति तो नारायण परायण कहते हैं। पर अयन परायण, पर का अर्थ सुप्रीम गोल, अयन का अर्थ आश्रय। जो श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सब कुछ मानता है, श्री कृष्ण को ही अपना सखा मानता है, बंधु मानता है, माता पिता सब कुछ, केवल उन्हीं से प्रेम करता है, उसको नारायण परायण कहते हैं। नारायण परायण ऐसा भक्त प्रशांत आत्मा होता है। आत्मा का अर्थ है मन, और प्रशांत का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण शांत। शांत का अर्थ है विषय भोग या मुक्ति की वासना सबसे बिल्कुल शून्य होता है, केवल भगवत सेवा की लालसा उसे होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत। जो श्री कृष्ण का भक्त होता है रियली, तो वह श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है, श्री कृष्ण से संबंध चाहता है, उनसे प्रेम करता है, उसको प्रशांत कहा, वो निष्काम होता है। काम का अर्थ है निजेंद्रिय प्रीति वासना। तो भक्त में चूंकि कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, तो वह कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांसा तार निजेन्द्रिय प्रतिवांसा तार नाम काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांसा धरे प्रेम नाम। जो अपने इंद्रियों को सुख देने की वासना है या किसी दूसरे की इंद्रियों को भी, तो इसको काम कहते हैं। और जो कृष्ण के इंद्रियों को सुख देने की इच्छा होती है, उसको प्रेम कहा गया है। इसीलिए गोपियों का जो प्रेम है, उसे भी शास्त्रों में प्राय काम कहा गया है। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथा, शास्त्र में बताया गया है कि जो गोपियों का निर्मल प्रेम भगवान के प्रति है, उसी को काम कहा जाता है। गोपियों के संबंध से उसे प्रेम समझना चाहिए। गोपियों में कभी स्वसुख वासना नहीं है, केवल कृष्ण को सुखी करने की वासना है। तो जो नारायण को ही सर्वस्व मानता है, नारायण को ही परमानंद स्वरूप, उनकी सेवा में ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य देखता है, उसको नारायण परायण कहते हैं। वह निष्काम होता है और इसलिए शांत होता है। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, भुक्ति चाहने वाला या मुक्ति चाहने वाले सब अपने फेरे में रहते हैं, चाहते हम बंधन से छूट जाए, हम ये हो जाए, लेकिन भगवत सेवा की कोई वासना उनके हृदय में घर नहीं कर पाती। तो फल के लिए लोलुप रहते हैं, हम मुक्त हो जाए, ये हो जाए, भाग जाए इधर उधर। तो मान लीजिए कोई परिवार की सेवा छोड़ करके भाग गया, किस लिए? कि हम मुक्त होना चाहते हैं।
लेकिन परिवार छोड़ करके यदि कृष्ण की सेवा करे तब तो ठीक है, लेकिन परिवार छोड़ करके कहीं एकांत में जा करके खाए, समाधि लगाए, ध्यान करे, तो वो अपने को मुक्त करने को फिर है, मुक्त होगा नहीं, मुक्त होने का वो उपाय नहीं है। कृष्ण की सेवा ही मुक्ति का उपाय है, इसको मुक्त हो जाएगा। तो बहुत कठिन है हृदय में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम की वासना, बहुत कठिन है। तो इतने इतने जीवों का आपने वर्गीकरण सुना, कितने जीव हैं दुर्लभ। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष जोनी ते कराए भ्रमण, इसी श्रृंखला में भेद करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली है या करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे ऐसे चन। इस ब्रह्मांड भर में जीव घूम रहे हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यवान जीव, यह निश्चित मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है, कोई कोई भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। और बीज प्राप्त करता है तो उसको बहुत संभाल करके माली बन करके वो अपने हृदय में उसको रोपण करता है। माली है या करे सही बीज आरोपण, चूंकि हृदय में कृष्ण प्रेम उदित होता है, तो हृदय ही मन ही सायल है, भूमिका है भक्ति लता को उत्पन्न करने के लिए। माली है या करे सही बीज आरोपण, माली होकर के बीज आरोपण करता है। कोई कोई व्यक्ति देखे होंगे माली किस तरह से बगीचे में लता को और किसी पौधे को संभाल करके रखता है, एक एक पौधे को देखता रहता है, कब इसको पानी देना है, कैसे बचाना है, कीड़ा से, बकरी से, इधर उधर से बचाता रहता। तो इस तरह से भक्त बड़ी संभाल के साथ माली का स्वभाव बना करके अपने हृदय के आलबाल में, थाला में, वह भक्ति बीज का रोपण करता है। मुख्य काम क्या है बीज रोपण करने के बाद, बीज प्राप्त हो गया भगवान कृष्ण की दया से, गुरु की कृपा से, तो बीज प्राप्त होने के बाद सबसे ज्यादा काम क्या करता है माली, श्रवण और कीर्तन जल कर ऐसे चाह, श्रवण और कीर्तन के जल से सींचता है इसको। जैसे इधर हम लोग देखे कोई कोई लता को रोज पानी चाहिए, तो भक्ति बढ़ानी हो, कृष्ण में प्रेम बढ़ाना हो, तो श्रवण और कीर्तन ही जल है। प्रचुर मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुनना चाहिए, उससे भक्ति लहलहा जाएगी, भर जाएगी, बढ़ जाएगी लता। इसको चैतन्य महाप्रभु आगे ऐसे बताए हैं कि जब श्रवण कीर्तन जल से तब लता बाढ़ी ब्रह्मांड भेदी जाए, वो लता इस तरह से बढ़ती है कि वो ब्रह्मांड को भेद जाती है। इसका मतलब भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है, आसक्ति होती है कि ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, वहां के भोग हैं, स्वर्ग आदि में, वहां मन नहीं ठहरता है, ब्रह्मांड को भेद जाता है। इस ब्रह्मांड के भीतर जो भी भोग हैं, देखने के, सुनने के, खाने के, पीने के, भक्ति का इतना सुख होता है कि ये सब सुहाते नहीं है। इसी को कहते हैं कि वो लता बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को भेद जाती है। और विरजा काल समुद्र को पार करके, विरजा नदी को पार करके, और ऊपर परव्योम में जाए, परव्योम में चली जाती है भक्ति लता। मतलब वैकुंठ बिहारी, वैकुंठ में बिहार करने वाले भगवान के पास पहुंच जाती है भक्ति लता। तबे जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। और यहाँ तक कि वैकुंठ भी नहीं सुहाता है उस भक्त को, वो लता ऐसे बढ़ती है कि ब्रह्मांड सत्यलोक ब्रह्मलोक तक पार कर ही गई, पर व्योम में वैकुंठ को ही पार कर जाती है। वैकुंठ बिहारी भी नहीं रुचते हैं उस भक्त को, तो वो वैकुंठ पार करके गोलोक वृंदावन में जाती है। गोलोक में जाकर कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण, और कृष्ण के का चरण कमल जो है, कृष्ण जो है कल्प वृक्ष की तरह, उन्हीं को लपेटना चालू करती है। अर्थात श्री कृष्ण ही दिशा लंबन है प्रेम के, श्री कृष्ण को ही वो भक्त चाहता है। जैसे कोई लता किसी वृक्ष को घेर लेती है और उसी पर रहती है, उस तरह से भक्त की चित्तवृत्ति उसका प्रेम केवल कृष्ण से रहता है। कहाँ विस्तारित है या फले प्रेम फल,
वहां विस्तारित होकर के प्रेम का फल फलती है, लेकिन यहाँ माली सींचे नित श्रवण आदि जल, लेकिन माली यहाँ फिर भी सिंचाई रखता है, लगातार सिंचाई करता रहता है, लगातार भागवत सुनना चाहिए। यह सिंचाई है, ये लता पहुंची है गोलोक में कृष्ण चरण कल्प वृक्ष में, लेकिन यहाँ माली सींचे नित श्रवण आदि जल, यहाँ रोज रोज श्रवण आदि जल की सिंचाई करनी होगी। ये नहीं सोचना चाहिए अब तो सुन लिया भगत, अब क्या सोचना है, अब क्या सुनना है आगे। यहाँ माली सींचे नित श्रवण आदि जल, जितने जल हैं भगवत प्रेम लता को पुष्ट करने के लिए, उनमें श्रवण ही आदि है। आदि का अर्थ होता है प्रधान, श्रवण आदि जल, श्रवण कीर्तन यही मुख्य है। और चैतन्य महाप्रभु जो श्रवण कीर्तन कह रहे हैं तो उसमें आदि भी नहीं लगा रहे, जैसा लगता है कि श्रवण और कीर्तन को ही केवल के रूप में कह रहे हैं। श्रवण कीर्तन में जल करे इसे चल, और यहाँ कहते हैं यहाँ माली सींचे नित श्रवण आदि जल, तो आदि शब्द से कीर्तन को लिया जाएगा, श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से यहाँ के वर्गीकरण से जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, इतनी दुर्लभ है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम इतना दुर्लभ है, वह वृत्त रासुर जैसे व्यक्ति में कैसे हो गए, ये आश्चर्य की बात। और यहाँ तक कहते हैं कि हमें बहुत संशय है इस विषय में, एतद् न संशयम् भूयान् श्रोतुम् कौतूहलम् प्रभो। हे प्रभु, हमें बहुत बड़ा संशय है कि ऐसे नालायक में, ऐसे रजोगुणी तमोगुणी में कृष्ण प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया, और सुनने की हमें बड़ी इच्छा है। और इसके पहले वे कहे हैं शत्रुवृत्र सवृत्रस्तु कथम पाप सर्व लोकोपतापन इत्थम कृष्ण दृढ़मतिर आसित संग्राम उल्बणे। और ये वृत्रासुर के विषय में मेरा प्रश्न है कि सर्व लोकोपतापन, सर्व लोगों लोकों को उपतापन सताता रहता था, ताप देता रहता था, और उसकी कृष्ण में ऐसी दृढ़मति, और वो भी उल्बणे संग्राम है, और भी भयंकर युद्ध के समय कृष्ण में ऐसी अटलमति रह गई। एतत् कौतूहलम् भूयान्, ये हमको बड़ा, एतत् न संशयम् भूयान् श्रोतुम् कौतूहलम् भी हो, इस विषय में हमारा बहुत बड़ा संदेह है कैसे भक्ति हो गई, और सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है, किस कारण से कृष्ण में प्रेम हुआ था, ये सुनने की बात है। क्योंकि उस साधन को जब भक्त कोई सुनता है तो करता है कि हमें भी प्रेम चाहिए, तो वृत्रासुर ने जो किया वह करना चाहेगा, इसी को कौतूहलम कह रहे हैं। हमें कौतूहल हो रहा है, कौतूहल हो रहा है जानने की जिज्ञासा, लालसा हमारे हृदय में, केवल संदेह मात्र नहीं है। कुछ लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं तो केवल संदेह और तर्क खड़ा करते हैं। आज एक व्यक्ति से बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा भाई किसी भी बात को जानने के लिए प्रमाण चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है उसकी माँ, उसकी माँ से पूछा जा सकता है कि इसका पिता कौन है, तो माँ बताती है, ये प्रमाण है। अनुसंधान से पिता को नहीं जान सकते, तो वो कहा और माँ ही ठीक न बतावे तो अजीब अजीब प्रश्न। जितनी गड़बड़ी है, जितना संशय है, उसी को पोषना चाहते हैं आप। इस तरह के संशय में पढ़कर सोचने वाले व्यक्ति कब ज्ञान प्राप्त करेगा। कई प्रकार के ऐसे तर्क दे रहे थे। जनरल विधि है कि पिता का पता लगाने के लिए माँ से पूछा जाएगा, माँ बताएगी, लेकिन माँ नहीं बताएगी ठीक तब क्या होगा। ये केवल असंभावना या संशय खड़ा करना, महाराज परीक्षित कह रहे हैं हमको संशय है, संशय है, लेकिन सुनने के लिए लालसा है, कौतूहल है। तो यदि मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी कहें कि युद्ध में इंद्र के भय से कृष्ण की शरण में हो गए वो। मान लीजिए लोक कहे अब भाई इंद्र से मरने के डर से वे भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, शरण में हो गए। अब कहते नहीं नहीं, यह पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतो से। वृत्रासु में इतना पौरुष था, पौरुष उन्होंने इंद्र देवता को संतुष्ट कर दिया था। इंद्र लोहा मान गए थे कि इसको मारना असंभव है। और एक भुजा कट गई थी वृत्रासुर की, दाहिनी भुजा कट गई थी, बाई भुजा तो उससे परिघ से मारे हुए इंद्र को, और दोनों भुजा कट गई थी, खून की धारा बह रही थी नदी की तरह। उस समय के मुख खोल करके दौड़े और इंद्र को हाथी के साथ खा गए। क्या इंद्र इनको मार सकते थे, क्या इसको भय था? तो नारायण कवच पढ़े थे उस प्रभाव से, और अमोघ वज्र था इसलिए पेट को फाड़ कर निकल गए। और 6 महीने इन साल भर में मस्तक काटे थे, मस्तक धड़ से अलग हुआ था साल भर के बाद, जो कि बहुत तीक्ष्ण गति से वज्र काट रहा था मस्तक को वृत्रासुर जी के। तो वह व्यक्ति भय थोड़े किया इंद्र के साथ, यह पौरुषेण समर है सहस्राक्षमतो से। सहस्राक्षम इंद्र को कहा गया है कि इंद्र वृत्रासुर का पौरुष देखकर भगवान इंद्र की सभी आंखें हौचक रह गए थे, देख रहे थे कितना बड़ा वीर है, कितना बड़ा इसमें पौरुष है, पुरुषार्थ है, धन्य है। यह देख जिसकी भुजा कटी हुई है, एक हाथ से परी चला रहा है, दोनों भुजा कट गई फिर भी खा गया इंद्र को, तो उसमें भय कहाँ है? इस प्रकार जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तब सूत जी कहते हैं, परीक्षितोथ संप्रश्नम भगवान बादरायणी निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनंद बचो ब्रवीत। ये योग्यता है वक्ता श्रोता की। महाराज परीक्षित के लिए शब्द दे रहे हैं सूत जी श्रद्धानस्य। महाराज परीक्षित श्रद्धालु थे। श्रद्धालु का अर्थ है कि भगवत कथा ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, इस बात में उनकी निष्ठा। कथा को साधन के रूप में तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन वास्तव में कथा केवल साधन मात्र नहीं है, कृष्ण कथा साध्य है। यह साध्य है, यह एम है जीव का। महाराज परीक्षित अपने जीवन के अंत में क्या किए? साधन तो बहुत पहले किए होंगे, लास्ट में उन्होंने साध्य प्राप्त किया। साध्य है और साधन भी है, तो इसको श्रद्धान कहते हैं, श्रद्धा थी। वृत्रासुर की भक्ति के प्रति वे लोलुप थे। युद्ध में इस तरह कृष्ण में मन को आविष्ट रखना, इसको सुनकर महाराज परीक्षित को लालच हुआ, लोभ हुआ कि हम भी वृत्रासुर जैसा अपने मन को भगवान में रखना चाहते हैं। इनकी भी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मृत्यु से पहले ही अपने मन को अस्थिर श्री कृष्ण के चरण कमल में रखना चाहते हैं। तो वृत्रासुर जी की कथा सुनकर, खासकर तो उनकी भक्ति की बात सुनकर महाराज परीक्षित को बहुत उत्साह मिल रहा था, उनकी बहुत श्रद्धा थी, तो उनकी ये योग्यता है। और बादरायणी, बादरायण के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की क्या योग्यता है? भगवान। भगवान का अर्थ है भगवत भक्ति से परिपूर्ण। ये भगवत भक्ति से परिपूर्ण है और महाराज परीक्षित भी भक्ति से परिपूर्ण है। तो परीक्षित के ऐसे संप्रश्न को, सम्यक प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और इनके प्रश्न का अभिनंदन किए, प्रतिनंद अभिनंदन करके, और इस प्रकार उन्होंने कहना प्रारंभ किया। तो अब यहाँ से वृत्रासुर के पूर्व जन्म की बात कही जाएगी, क्योंकि पूर्व जन्म में उनको भगवान की भक्ति मिली थी, इस जन्म में नहीं। पूर्व जन्म में उन्होंने क्या साधन किया था, कैसे भक्त थे, आप सुनेंगे कि वे एक नंबर के विषयासक्त व्यक्ति थे। तथापि श्री नारद जी और अंगिरा जी की कृपा से इनमें भक्ति का बीज उगा था। तो साधु संग सर्वशास्त्र कहे लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इस जीवन में वास्तव में कृष्ण प्रेम पाने के लिए साधु संग ही सबसे प्रबल उपाय है, तो इन्होंने किया था। इस कथा को फिर हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण
भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी तिनामिने।
नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रसारिण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्री शुक उवाच सुस्वावहितो राजान इतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायन मुखात् नारदा देवलादपि आसित राजा सार्वभौमः शूरसेने सुवै नृप चित्रकेतुरिति ख्यातो जस्यासित कामधूमहि तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दशा भवान् सन्तानिकश्चातुरुपो न लेभेता सुसंतति। शृणुस्व सुनो अवहितः समाहित चित से ध्यान पूर्वक राजन हे महाराज परीक्षित इतिहासम सत्य घटना इमाम यह जो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं जथा जथावत मैं जोड़ रहा हूं मैं घटा रहा हूं जैसी घटना है वैसे श्रुता मेरे द्वारा सुना गया है द्वैपायन मुखात कृष्ण द्वैपायन के मुख से अपने पिताजी के मुख से नारदात श्री नारद जी से देवलात देवल ऋषि से अपि भी महाराज परीक्षित कल प्रश्न किए थे यहाँ की कथा के अनुसार कल प्रश्न किए थे कि वृत्रासुर लोकोपतापी होते हुए भी रजस्तम स्वभाव का होते हुए भी भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे हो गए उनकी मति श्री कृष्ण में कैसे लग गई दृढ़ता से हमें इस विषय में बहुत बड़ा संशय है और इसके साथ ही साथ उनकी कृष्ण भावना के विषय में जानने का मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। कृपया सुनाइए। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उनके इस प्रकार के प्रश्न का भी अभिनंदन किए। अभिनंदन करके अब वे कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सुस्वावहितो राजन इतिहासम इमम जथा हे राजन इमम इतिहासम श्रृणुस्व इस इतिहास को सुनो। और सुनने के पहले क्रिया विशेषण दे रहे हैं अवहित सावधान होकर सुनो। कुछ ऐसी बात इसमें आएगी जिसको सुन करके विश्वास नहीं होगा इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सावधानी से सुनो, चित लगा करके सुनो, ये इतिहास है, सत्य घटना है। क्यों नहीं विश्वास होगा? क्योंकि आगे सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संस्कृत में कोटि का अर्थ होता है 10 लाख। 10 लाख विवाह किए थे और 10 लाख से एक भी पुत्र नहीं है। एक तो विवाह 10 लाख किए वो आश्चर्य है, दूसरा आश्चर्य है कि किसी से कोई संतान नहीं हुआ। लेकिन है यह इतिहास, और एक व्यक्ति से सुने होते तो हो सकता था कि ध्यान नहीं दिए होंगे, 10 के बदले 10 लाख सुन लिए होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते हैं श्रुतम द्वैपायन मुखात, भगवान वेदव्यास देव के मुख से मैं सुना हूँ, श्रुतम द्वैपायन मुखात नारदात देवलाद अपि, नारद जी से भी सुना हूँ, अपने गुरु महाराज के अपने पिताजी के गुरु से सुना हूँ, मतलब इनके गुरु भगवान वेदव्यास देव थे। तो कहते हैं मैं अपने गुरु जी से वेदव्यास देव से सुना हूँ और उनके गुरुदेव श्री नारद जी के मुख से सुना हूँ, और यह इतिहास मैंने देवल मुनि के मुख से भी सुना है। देवलाद अपि, श्री सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े वक्ता हैं भगवत कथा के, इससे सिद्ध होता है इस प्रसंग से कि वे बहुत बड़े श्रोता भी थे। आज जो श्रोता है वही आगे वक्ता होता है, बिना सुने कोई वक्ता कथा नहीं कह सकता है, बक सकता है, बकने वाला हो जाता है। सुनना बहुत जरूरी है भगवत कथा को देने के लिए, और यह सबसे बड़ा प्रीचिंग है। एक दिन वृंदावन में एक व्यक्ति हमसे कहा, महाराज प्रचार बड़ा है कि कथा बड़ा है? अब इसको क्या समझाया जाए, कथा से बढ़ करके कोई प्रीचिंग है ही नहीं। ये सबसे बड़ा प्रीचिंग, और विशेष करके कथा भक्तों के लिए प्रीचिंग है, प्रीचर तैयार करने के लिए सबसे बड़ा प्रीचिंग। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी सुनते थे श्री नारद जी के मुख से, देवल मुनि के मुख से, भगवान वेदव्यास देव के मुख से, और अपि का अर्थ होता है च, और लोगों से भी सुने हैं, इसका अर्थ यह हुआ अपि। अपि शब्द के कई अर्थ होते हैं, चैतन्य चरितमृत में इसके अर्थ को खोल करके बताया गया है। आत्मा रामाश्च मुरयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्त है ककिं भक्ति निर्थम भूत गुणो हरित, इसमें अपि शब्द आया है, इसकी व्याख्या भगवान चैतन्य महाप्रभु ने की है। तो अपि शब्द का एक अर्थ होता है अनुक्त समुच्चय, कोई पद कहा जा रहा है उसमें जो बातें नहीं कही गई हैं, यदि अपि कह दिया जाए तो नहीं कही हुई बातें भी संग्रहित हो जाती है। तो तीन व्यक्ति का तो नाम रख रहे हैं, द्वैपायन से सुना हूँ, देवल से सुना हूँ, नारद से सुना हूँ, और अपि से जिनका नाम नहीं बोल रहे हैं और भी लोगों से सुना हूँ, इसका अर्थ ही है। और बहुत से लोगों के मुझसे सुना, एक एक व्यक्ति ही परम प्रमाण है। झूठ बोलने वाले सब ऋषि नहीं है, सुनेंगे भगवान वेदव्यास देव अपने पुत्र को झूठा इतिहास सुना दिए, या श्री नारद जी सुना दिए, अरे कृष्ण, यह सत्य इतिहास है और उच्च कोटि के सत्य वक्ताओं के श्रीमुख से मैंने सुना है। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु थे, यही इतिहास है, इसको ये कह रहे हैं। तो आप लोगों को भी कोई संशय नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्तों के मन में यह बात आती है कि 1 कोटि लिखा गया है, इसमें ऐसे लिखा गया है सहस्राणाम सहस्राणी 10 हजार को 1000 से गुना करेंगे तो कितना होगा, कोई गणितज्ञ बता सकते हैं? 10 हजार का 1000 से गुना कितनी रानियां, 1 करोड़। एक करोड़ का संस्कृत में अर्थ होता है 10 लाख, ऐसा कहा गया है। 10 लाख भी कोई कम संख्या नहीं है, कोई सोचे कि ये 90 लाख कम कर दिए। 90 लाख कम करे, 10 लाख कोई कम संख्या नहीं है, लेकिन हम लोग चले 1 करोड़ ही मान करके कि 1 करोड़ दानी है। पहले उनका परिचय दे रहे हैं, कहाँ के राजा थे, अब कथा चालू करें। आसीत राजा सार्वभौम शूर सेने सुवय नृप चित्र केतुरुपीख्यात जस्यासीत काम धुम ही। एक राजा थे चित्रकेतु इति ख्यात, चित्रकेतु में के रूप में उनकी ख्याति थी, उनका नाम था चित्रकेतु और वे सूरसेन प्रदेश के राजा थे, मथुरा के राजा थे। यह उस समय सूरसेन कहा जाता था उस प्रदेश को। तो इस सूरसेन में आगरा और हाथरस, कुछ अलीगढ़, भरतपुर और मथुरा, ये सब जिला आ जाते हैं। इस क्षेत्र के राजा ब्रज के ही राजा चित्रकेतु महाराज सार्वभौम, ऐसे वह राजधानी थी इनकी। सूरसेन क्षेत्र के राजा थे लेकिन थे सार्वभौम, सर्वभूमि के मालिक। राजधानी वहां थी लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर इनका अधिकार था। सार्वभौम का ही अर्थ है सर्वभूमि से सार्वभौम शब्द बनता है। सार्वभौम का अर्थ है सर्वभूमि का स्वामी जो है। तो महाराज चित्रकेतु संपूर्ण वसुधा के शासक थे और चित्रकेतु नाम से विख्यात थे, इनका नाम था चित्रकेतु। इनके समय में पृथ्वी सब कुछ उत्पादन देती थी, जैसे काम धुंग मही मही पृथ्वी काम धुंग आशित, जीवों के या मनुष्यों के इच्छा के अनुसार पृथ्वी पैदा देती थी। इतना अच्छा राजा थे कि उनके शासन काल में पृथ्वी से जीवों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी कामना के अनुसार फसल या कुछ भी हो रहा था, फल उत्पन्न हो रहे थे, दूध उत्पन्न होता था या जो भी कपड़ा लत्ता बनता है कपास आदि से सब प्रचुर मात्रा में हो रहे थे। रत्न अपने आप निकल रहे थे समुद्र से, पहाड़ों से, और इसी तरह से फसल से सारा देश भरा हुआ था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। इसको कहते हैं सर्व काम धुम मही। धुम का अर्थ दोहम, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से कुछ भी निकाल सकता था। ऐसा नियम है कि यदि राजा बहुत धार्मिक हो, कुशल हो, तो उसके शासन काल में पृथ्वी कई गुना पैदावार देती है अपने आप, और जब राजा पापी हो जाते हैं तो पृथ्वी देना बंद कर देती है। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है कि जब देन राजा हुआ था तो पृथ्वी ने ये अनाज फल दूध आदि पैदा करना बंद कर दिया था, नहीं दे रही, तो जनता खाने बिना मरने लगी। तो बाद में बेन के बांह को मथा गया, उससे भगवान का अवतार हुआ, पृथ्वी महाराज आए। उस समय प्रजा आकर के उनके सामने अपना पेट दिखा करके हाहाकार कर रहे थे कि हम मर जा रहे हैं, मर जाएंगे, जल्दी हमको भोजन की व्यवस्था कीजिए। प्रजा मतलब केवल मनुष्य नहीं, संपूर्ण पशु पक्षी चराचर सभी हाहाकार कर रहे थे। तो भगवान पृथ्वी को दंड देने के लिए चले, ये गौ के रूप में भागी। भगवान पीछे पीछे धनुष बाण लेकर के चल रहे थे, अंत में पृथ्वी शरण में गिर गई। कहाँ भाग सकती है भगवान की, कहाँ छूट सकती है। भगवान के शरण में आई तो भगवान पृथ्वी ने कहा कि जब सृष्टि हुई शुरू में तुम्हारे भीतर सारी औषधियां रखी गई, जितना अनाज फल दूध घी कुछ भी सब कुछ तुम्हारे भीतर रखा गया कि इन जीवों का पालन करना है, तो तुम पैदा क्यों नहीं दे रही हो। तो पृथ्वी कहती है कि हे नाथ, मैंने देखा कि व्रत धारण नहीं करने वाले, उच्छृंखल जीवन जीने वाले, वेदों का विरोध करने वाले सब अभक्त मेरे पैदा को खा रहे, इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो भगवान ने कहा कि अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो पैदा करो, अब यज्ञ होगा, भक्ति होगी, कीर्तन होगा, तो अब तो करो। तो कहते हैं कि पक्ष गया मुझे, अब कोई बछड़ा चाहिए। तो भिन्न भिन्न जातियों के पशु पक्षी आदि के अलग अलग बछड़े बनाए गए और भगवान पृथ्वी ने दोहन किया पृथ्वी का। पृथ्वी महाराज इसके पिता बने पृथ्वी के, इसीलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी से संबंध होने के कारण इसको पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी महाराज की पुत्री मानी गई है पृथ्वी, बेटी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो भगवान के अवतार हैं। तो इस प्रकार यहाँ लिखा गया है कि चित्रकेतु के शासन काल में पृथ्वी काम भी थी, जीवों की इच्छा के अनुसार सब कुछ दे रही थी। और एक आश्चर्य सुनिए, तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणी दशा भवन सांतानिकश्चात्मिको न लोभेता सुसंतति। महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, तो प्रश्न होगा कि इतने विवाह क्यों किए, इतने विवाह की क्या आवश्यकता थी। कहते हैं सांतानिक, उन्हें संतान की इच्छा थी। तो प्रश्न होता है कि इनमें मेडिकल कमी तो नहीं थी। नहीं, संतानी का अर्थ है कि वे पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ थे, लेकिन संयोग बस जिन जिन स्त्रियों से विवाह हुआ वे सब बैरों थी, वो बंध्या थी। विवाह पहले तो 1-2 से किए होंगे, उसके बाद 100-200 सेट के सेट करते होंगे, लेकिन सब वैसे ही सब बंध्या हो गए। राजा थे ही, इसलिए वो इतना विवाह कर सकते थे। संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे तो किए, लेकिन दैव योग से नृप तेज ताशी संतति न ले गए। संतान की इच्छा थी और संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे। डॉक्टर ने बताया था कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं, परंतु जो भी विवाह हुआ स्त्रियों में कमी रहती, नहीं हुआ संतान कोई। इस बात को सुन करके कोई कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा या कहेगा कि ऐसे ही बातें बनाई गई हैं भागवत में, यह बात नहीं है, सत्य है। एक समय में एक तरह के प्रभाव देखे जाते हैं कोटि कोटि लोगों पर। जैसे रात आती है तो हमारे देश में जो इधर पूर्व में पड़ता है, कोटि लोग सो जाते हैं ना रात को, लगभग सो ही जाते हैं, कोई कोई काम करते रहते हैं लेकिन ज्यादातर सो ही जाते हैं। एक क्रिया कर रहे हैं कोटि लोग, ट्रेन में चलते हैं तो सैकड़ों हजारों लोग एक साथ चल रहे हैं, सबकी गति एक साथ। तो 1 करोड़ स्त्रियां बांझ हो जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भगवान की सृष्टि में ऐसा हो संभव है? कोई ये कह सकता है तो किसी ब्राह्मण से पूछ करके पहले दिखाकर विवाह नहीं करते थे? अरे कुछ भी करे, मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होती है। जहाँ ईश्वर की इच्छा होती है कि पुत्र हो तो एक ही स्त्री से कितने हो जाते हैं, और नहीं तो हम लोग ये देखे हैं कि 2-4 स्त्री रखे हैं और एक भी पुत्र नहीं हुआ इसी संसार में, ऐसा देखते हैं। तो ऐसा विधान था ईश्वर का कि 1 करोड़ रानियों से विवाह हुआ कन्याओं से, लेकिन कोई संतान नहीं। रूप उदार जब जन्म विद्यावर्ज श्रियादि भी संपन्न से गुण सर्व चिंता बंध्या पतरभूत। यद्यपि राजा सब तरह से संपन्न थे, सब कुछ था उनके पास, फिर भी वे